समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा। नमस्कार श्रोताओं, 100.1 मेगाहर्ट्ज पर हम हाजिर हैं न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा लेकर। और आप सोच रहे होंगे कि आज बाल दिवस तो है नहीं, तो हमने ये गीत आपको क्यों सुनवाया। मोगली, बाघा, शेरखान जैसे नायाब किरदार देने वाले लेखक की आज पुण्यतिथि है और कार्यक्रम में हम आगे उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो अभी हम हाजिर हैं परिक्रमा के साथ, जिसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। आधे घंटे के कार्यक्रम में हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार आपको सुनाएंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास राज्यों की परिक्रमा के लिए और जानेंगे कि क्या कुछ खास है उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और उन विशिष्ट व्यक्तित्वों को भी हम याद करेंगे जिनकी आज है पुण्यतिथि या फिर जन्मदिवस, और इसी हिस्से में हम आपको बताएंगे उस लेखक के बारे में। परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं मुदिता और मेरे साथ है मेरी को होस्ट शगुन चोपड़ा। शगुन, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू यू एज वेल।
A very good afternoon to you, Mudita, as well, and a very warm welcome to all our listeners tuned to Parikrama on 100.1 FM. This is Shagun Chopra with Mudita, and I can't go ahead further without saying, Mudita, that this song brings back so many memories, and how fortunate we are that we can watch these cartoons now at any time and anywhere.
Bilkul.
Well, more on that on the show, and our program is studded with news, Dateline India, our discussion segment, capsules and tributes, and so much more. So make sure, listeners, to stick around till the end with us. We begin with the news headlines first. Prime Minister Narendra Modi distributes over 65 lakh property cards under Swamitva scheme across 10 states and 2 union territories, says the scheme aims to empower rural communities in land management.
70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए दाखिल 1500 से अधिक नामांकन पत्रों की आज जांच हो रही है।
735 पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स एंड 33 इजरायली हॉस्टेजेस सेट फॉर रिलीज इन द फर्स्ट फेज ऑफ गाजा सीज फायर एंड हॉस्टेज रिलीज डील स्टार्टिंग टुमारो।
और बैडमिंटन में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी आज शाम इंडिया ओपन के सेमीफाइनल में मलेशियाई जोड़ी गो जी फेई और नूर इजुद्दीन का सामना करेंगे।
And now, listeners, it's time for our segment Dateline India, which is our discussion segment. And today, we'll be focusing on the recently held National Sports Awards. Well, in the words of Dan Gable, gold medals aren't really made of gold. They are made of sweat, determination, and a hard-to-find alloy, which is called guts. Such a wonderful thought it is, Vidita.
बिल्कुल शगुन, बिल्कुल सही बात कही है उन्होंने। और यहाँ मैं आगे जोड़ना चाहूंगी जो मैंने सानिया मिर्जा का लिखा हुआ कहीं पढ़ा था, उनका बोला हुआ, खेल को खेल की तरह देखें, खेलें और फिर खेल खेल में आप दुनिया जीत सकते हैं। और यही किया है हमारे खिलाड़ियों ने, जिनको कल सम्मानित किया गया है और जिनके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं।
राइट मुदिता, President Draupadi Murmu conferred the National Sports Awards 2024 at Rashtrapati Bhavan in New Delhi yesterday. World chess champion D. Gukesh, double medalist at the Paris Olympics Manu Bhakar, men's hockey team captain Harmanpreet Singh and gold medalist at the Paris Paralympics Praveen Kumar were honoured with the prestigious Major Dhyan Chand Khel Ratna Award.
जी हाँ श्रोताओं, और जैसा आपको पता है कि ये पुरस्कार खिलाड़ियों को खेल के क्षेत्र में किए गए शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिए जाते हैं। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार पैराशूटिंग कोच सुभाष राणा, शूटिंग कोच दीपाली देशपांडे, हॉकी कोच संदीप सांगवान, बैडमिंटन कोच एस मुरलीधरन और फुटबॉल कोच अर्मांडो एग्नेलो कोलाको को प्रदान किया गया। 32 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया।
एंड मुदिता, टॉकिंग अबाउट द अर्जुन अवार्ड्स, वेटरन एथलीट सुचा सिंह एंड वेटरन पैरा स्विमर मुरलीकांत पेटकर वर ऑनर्ड विद अर्जुन अवार्ड्स द लाइफ टाइम. द चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी रिसीव द मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी एज द ओवरऑल टॉप परफॉर्मिंग यूनिवर्सिटी इन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स.
और राष्ट्रीय खेल पुरस्कार विजेताओं ने इन पुरस्कारों से सम्मानित होने पर खुशी व्यक्त की है. अर्जुन अवार्डी पैराशूटर मोना अग्रवाल ने कहा कि ये सम्मान पाकर वो गौरवान्वित हैं.
जो गिफ्ट हमें गवर्नमेंट ने दिया है अर्जुन अवार्ड के रूप में, जो सम्मान दिया है, वो बहुत ही अच्छा लग रहा है. बहुत प्राउड फील कर रहे हैं और हमारे साथ साथ हमारे फैमिली मेंबर्स, हमारे कोचेस सब साथ में हैं. सभी बहुत दिल से खुश हैं कि इस बार जितने भी मेडलिस्ट थे जिनको पहले कभी अर्जुन अवार्ड नहीं मिला, उन सभी को अर्जुन अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया गया है. मैं बस यही कहना चाहूंगी कि आप बस एफर्ट करते रहिए, रिजल्ट के बारे में मत सोचिए. रिजल्ट खुद ब खुद आपके एफर्ट के पीछे आपके साथ साथ आ जाएगा.
वहीं एक अन्य अर्जुन पुरस्कार विजेता पैरा तीरंदाज राकेश कुमार ने कहा कि उनकी 8 साल की कड़ी मेहनत सफल हो गई है.
मैं अभी एथलीट हूं. मैंने 2017 से लेकर अब तक मैं तैयारी करता आ रहा हूं और हमेशा अपने कोच श्री कुलदीप कुमार वेदवान जी का कहा ही मानते आ रहा हूं. और आने वाली जो जनरेशन है, मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि वो जिस भी कोच के पास जो भी स्पोर्ट्स करे, वो सिर्फ अपने कोच की माने.
Well, talking exclusively with Akashwani News, another Arjun awardee and Paris Paralympics gold medalist in javelin throw, Navdeep Singh said that amongst several challenges he faced, his biggest challenge was to fight his internal battles and to prove himself.
देश की तरफ से मेडल आने के बाद जो प्रोत्साहन मिल रहा है वो काफी काबिले तारीफ है. खिलाड़ी का सपना होता है और आज मैं भी वो अवार्डी हूँ तो मेरे को काफी अच्छा महसूस हो रहा है.
Well, now let's tell you about Dronacharya awardee and shooting coach Dipali Deshpande. She said that players endure more failures than success, and as a coach, it is her responsibility to ensure that those failures does not affect them negatively, but serve as a learning curve.
ये द्रोणाचार्य अवार्ड मुझे मिला है. मेरे पिछले 12 साल से मैं कोचिंग कर रही हूँ शूटरों को. खिलाड़ी तो जैसे जितना सक्सेस उसको मिलता है, उससे ज्यादा फेलियर्स उनको फेस करना पड़ता है. तो वो खेल का एक अहम हिस्सा है और वो फेलियर से ही हम सीखते हैं और बड़े परफॉर्मेंस की तरफ जाते हैं.
और शगुन, जब हम इन उपलब्धियों का जश्न मना रहे होते हैं खिलाड़ियों की, तो हम भूल जाते हैं कि उन उपलब्धियों को हासिल करने की राह में उन्होंने जिन चुनौतियों का सामना किया है, उनके बारे में हमें जरूर जानना चाहिए, क्योंकि शून्य से नायक तक की उनकी यात्रा जो है वो बहुत कठिनाइयों से भरी होती है.
एंड मुरिता, आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट वन सच प्रॉब्लम विच इज फेस्ड बाय द एस्पायरिंग एथलीट्स. दिस इज वाइडली टॉक्ड अबाउट बाय द एथलीट्स देमसेल्व्स हू हैव वन. यू नो, दिस इज अबाउट द लैक ऑफ स्टेडियम्स.
जी.
और the concentration of stadiums, which is particularly not in the cities, where they are living, basically. So this poses like major challenge to the aspiring athletes.
Ji, bilkul.
Another problem which I would like to talk about is the lack of encouragement to the girls that participate in the sports. And this impairs the development of a positive sports culture overall in the country, right?
Bilkul, uski bahut zarurat hai. Aur hum aksar dekhte hain ki kai baar khiladiyon ke interviews mein jahan wo batate hain ki unke paas shuruaat mein khelon se related jo bhi upkaran hote hain, jo tools aur equipments hote hain, wo khareedne mein wo saksham nahi the aur unke liye kitna mushkil bhara daur hota hai wo. और कैसे उनके माता पिता, उनके कोच उनके लिए उन इक्विपमेंट्स को अरेंज करते हैं, मैदान और स्टेडियम्स का प्रबंध करते हैं ताकि जहां पर जाकर के वो प्रैक्टिस कर सकें. तो ये काफी चैलेंजेस हैं उनकी राह में.
राइट, विच दे फेस अलोंग विद यू नो परफॉर्मिंग इंटरनेशनली और नेशनली. दिस एड्स अप टू द प्रेशर.
बिल्कुल.
एंड मुदिता, विद द एडवेंट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड वीडियो गेम्स स्पेशली, दिस डिस्ट्रैक्ट्स द चिल्ड्रेन नाउअडेज. दिस इज सच अ पोटेंट प्रॉब्लम राइट नाउअडेज. And they're not kind of going to the playgrounds. Playgrounds are seen empty nowadays, and they refrain from playing physical games. And today, many children are stuck on their mobiles instead of playing with their friends on the playground. This is because of the एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, वी कैन से दैट वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस.
बिल्कुल सही बात है शगुन. और इसी के कारण छोटे बच्चे, इतनी छोटी सी छोटी उम्र के बच्चे जो हैं, वो भी कई गंभीर बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं. डायबिटीज और हाइपरटेंशन के केसेस देखने को मिलते हैं. इसके अलावा मेंटल हेल्थ, जो मानसिक स्वास्थ्य की हम बात करते हैं, वो भी अफेक्ट हो रहा है, कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है इन सब चीजों से.
एंड दिस पर्टिकुलर थिंग is like broadly this consists of because of the sedentary lifestyle being the operative word here by spending much time sitting. And if you're playing sports, I would like to tell our listeners also, it's not just for the athlete specifically. If you want to make a career and establish yourself as an athlete, other than that also you should play sports because it has many, many, many advantages.
Bilkul.
Right? Bilkul. If we talk about them.
तो जो एडवांटेजेस की आप बात कर रहे हैं, मुझे लगता है शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों ही तरह के लिए जरूरी है ये खेलना.
फिजिकल फिटनेस, रिड्यूसिंग द प्रेवलेंस ऑफ लाइफस्टाइल डिजीजेस व्हिच यू वर टॉकिंग अबाउट, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, अलोंग विद रिड्यूसिंग स्ट्रेस, डिप्रेशन एंड एंजाइटी, एंड प्रमोटिंग मेंटल वेलबींग इन एन इंक्रीजिंगली अर्बनाइज्ड डिजिटलाइज्ड सोसाइटी. राइट,
बिल्कुल सही बात है शगुन. और जब हम बात करते हैं भारत में खेलों की, तो एक चीज पे हमारा ध्यान जरूर जाता है कि भारत में खेल संस्कृति को फिर से जीवित करने की जरूरत है. काफी काम हुआ है इस बीच में. right. और अब तो देखना चाहिए कि हमें सरकार ने भी खेल क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई पहल शुरू करी है, लेकिन फिर भी जो बुनियादी स्तर पर इसको जो है बहुत ज्यादा अभी काम करने की हमें जरूरत है.
यस मुदिता, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, एंड वन सच Ray of sunshine has been the Fit India movement, which mentions that the schools are also allowed to include traditional and regional games in the curriculum. Mm-hmm. And making it a part of the curriculum will actually boost the confidence of people, the students, so they can take up sports activities. And making it a mandatory component of the curriculum, which needs to be clarified.
बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात कही आपने. तो आप खेलों को एक्स्ट्रा करिकुलर गतिविधियों से उठकर हमारे शैक्षिक पारिस्थितिकी तंत्र का अभिन्न अंग बनना चाहिए, और इस दिशा में हमें अब काम करने की जरूरत है.
राइट, एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू कोट यूसेन बोल्ट हियर. ही सेड, ड्रीम्स आर फ्री, गोल्स हैव अ कॉस्ट. व्हाइल यू कैन डे ड्रीम फॉर फ्री गोल्स, डोंट कम विदाउट अ प्राइस. द ड्रीम्स डोंट कम विदाउट अ प्राइस. टाइम, एफर्ट, सैक्रिफाइस एंड स्वेट, हाउ विल यू पे for your goals.
सही बात है शगुन. और जैसा कहते हैं ना कि सच्ची ताकत हर खेल को जीतने में नहीं है, बल्कि खुद से कभी हार नहीं मानने में, क्योंकि हर चैंपियन जो है वो कभी ना कभी नौसिखिया था जिसने कोशिश करनी नहीं छोड़ी.
राइट.
और अब समय है राज्यों की परिक्रमा का, अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या है खास.
वेल मुदिता, वील बिगिन विद द फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 विच कमेंस टुडे इन तिरुपति डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश. दिस इवेंट हैज ग्रोन इनटू अ वाइब्रेंट सेलिब्रेशन प्रमोटिंग टूरिज्म व्हाइल हाईलाइटिंग द इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ दिस रीजन. वी हैव मोर ऑन दिस फ्रॉम आवर कॉरेस्पॉन्डेंट.
The Flamingo Festival, conceptualized in 2001, aligns with the arrival of flamingos and other migratory birds during this season. Set against the scenic backdrop of Pulicott Lake and Nelapattu Bird Sanctuary, the festival offers unique blend of nature, culture and conservation. While Pulicott Lake, India's second largest brackish water lagoon, supports a diverse range of migratory birds, Nelapattu serves as a nesting ground for them. Starting in mid-October, these wetlands, renowned for their biodiversity, serve as the wintering grounds and stopover points for birds migrating from the northern hemisphere. The wetland ecosystem not only supports diverse avian life but also plays a crucial role in the regional ecological balance. Expert-led bird watching sessions by tourism department aim to educate over diversified bird species. Several other activities like adventure sports, cultural performances and exhibitions are being organized for the public. Sai Sishla for Parikrama, Akashwani, Vijayawada.
और अब चलते हैं हम मुंबई की तरफ, जहां सबसे प्रतिष्ठित इमारतों में से एक डॉक्टर भाऊ दाजी लाड संग्रहालय ने हाल ही में इतिहास के प्रति उत्साही और आम जनता के लिए अपने दरवाजे फिर से खोल दिए हैं. संग्रहालय 4 साल के लिए बंद कर दिया गया था, शुरुआत में कोविड महामारी के कारण और बाद में नवीनीकरण कार्य के लिए. हमारे मुंबई संवाददाता से जानते हैं इसके बारे में.
लोकेटेड ऑन द प्रीमाइसेस ऑफ जीजामाता उद्यान इन सेंट्रल मुंबई, डॉक्टर भाऊ दाजी लाड म्यूजियम इज महाराष्ट्रस ओल्डेस्ट एंड इंडियाज थर्ड ओल्डेस्ट म्यूजियम. इट हाउसेज अ यूनिक कलेक्शन दैट नरेट्स द स्टोरी ऑफ मुंबई एंड हाउ इट इवॉल्व्ड इनटू द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ द कंट्री. लेट अस हियर मोर from Ruta Waghmare, the curator of Dr. Bhau Daji Lad Museum.
So this museum is in fact Mumbai's first museum. It was opened to the public in 1872 and established way back in 1857. It also has the distinction of being India's third museum. Bombay Presidency did not have museums, and there were major international exhibitions happening for which they required objects from Western India, and that led to a certain group of educated individuals, educated philanthropists, saying that, okay, if we had a museum here, and a 19th century museum movement had started across India. So in fact, in Bhavdaji Lad's speech, he says that the museum should be read like a book. That was the idea behind creating this museum. And this was really a museum built by the people of Mumbai, Jagannath Chakrashay and Bhavdaji Lad himself, after whom the museum is named today, Jamshedji Jiji Boy. They really had public money pulled in to build this building for the people of Mumbai. The museum showcases craftsmanship of what was the erstwhile Bombay Presidency that showcased the level of skill that existed. The idea of the museum was to showcase to an international audience as well, because there were several international exhibitions happening that required objects from India, beautiful handmade products.
Originally named the Victoria and Albert Museum, the museum was renamed on 1st November 1975 in honor of Dr. Bhavdaji Lad.
Bhavdaji Lad himself was a very, very well-known personality in 19th century Mumbai. He was the first Indian sheriff of the city of Mumbai. He was a doctor. He also was extremely respected by people. He was extremely well-read. Because of the level of trust and respect he had in the society, he was appointed as a museum secretary.
For Parikrama, this is Ankita Apte from Mumbai.
Well, from Mumbai, let's take our listeners to Kerala. In a major upgrade to the tourist experience in Kerala, the traditional tourist information centers at airports, railway stations and other locations will soon be replaced with advanced kiosks equipped with chatbot technology. A memorandum of understanding was signed in this regard between the Kerala Tourism and the Kerala Startup Mission. The kiosks aim to provide quick, efficient and user-friendly information to tourists, catering to the evolving needs of modern travelers. Our Kochi correspondent has more. Listen in.
The new kiosks will be installed at traditional tourist locations and strategically placed in IT parks, targeting the growing segment of domestic travelers from the technology sector. The move signals a significant leap toward tech-driven tourism services, which the state government plans to roll out immediately. These sleek and compact kiosks require minimal space and are designed to operate round the clock. The kiosks will be multilingual, making them accessible to a wider range of users. The old tourist information centers were found to be outdated and have been discontinued as they were no longer effective. About 10 startups have submitted proposals for the project, which are currently undergoing technical and financial evaluation. Work orders are expected to be issued this month, ensuring that the kiosks will soon be operational. These state-of-the-art kiosks will provide tourists with essential information at the touch of a button, covering topics like distances to major attractions, must-see sites, and tour packages. The kiosks will also offer integrated services such as hotel and cab bookings and railway ticketing, significantly simplifying travel logistics for visitors. There are also plans to add additional features in the future, including virtual reality tours of Kerala's tourism destinations, enhancing the tourist experience further. The high-tech kiosks reflect efforts at leveraging technology for a seamless, memorable travel experience. The move is expected to reinforce the state's reputation as a forward-thinking and tourist-friendly destination. Raj Mohan, Akashwari News, reporting from Kochi.
और खेल के मैदान की हलचल में खो खो विश्व कप 2025 में भारतीय पुरुष और महिला टीम आज सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगी. ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता अभिषेक के पास.
सेमीफाइनल के अन्य मुकाबलों में ईरान की पुरुष टीम का मुकाबला नेपाल की पुरुष टीम से होगा. टूर्नामेंट में भारत, दक्षिण अफ्रीका और नेपाल की पुरुष और महिला टीमों ने सेमीफाइनल में जगह बनाई है. भारतीय पुरुष टीम ने कल शानदार प्रदर्शन करते हुए श्रीलंका को 140 के स्कोर से हराया. इस बीच भारतीय महिला टीम ने देश पर 109-16 से बड़ी जीत हासिल करी. कप्तान प्रियंका इंगले के नेतृत्व में टीम ने पूरे मैच में अपना दबदबा बनाए रखा. यह लगातार चौथा मुकाबला था जिसमें भारतीय महिला टीम ने टूर्नामेंट में 100 अंक से अधिक का स्कोर किया. अभिषेक कपिल, आकाशवाणी दिल्ली.
Well, focusing now on cricket, the second edition of ICC Under-19 Women's T20 World Cup began today in Malaysia. In the opening match, Australia beat Scotland comfortably by 9 wickets. Australia achieved the target of 48 runs in 6.4 overs.
और अब बात उन हस्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या फिर जन्मदिवस. और इस क्रम में सबसे पहले हम भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानियों को याद करेंगे. It was on 18th January that Rabindranath Tagore visited Sabarmati Ashram in 1930. Mahatma Gandhi and Rabindranath Tagore were two extremely different personalities, politically and ideologically. However, they had a great sense of mutual respect and fellowship for each other. Gandhiji was bestowed with the title of Mahatma by Rabindranath Tagore in 1915. The sense of respect that Gurudev and Mahatma shared for each other is well reflected in the words of Rabindranath Tagore.
He stopped at the thresholds of the huts of the thousands of the dispossessed, dressed like one of their own. He spoke to them in their own language. Here was living truth at last, and not quotations from books. For this reason, Mahatma, the name given to him by the people of India, is his real name. Who else has felt like him, that all Indians are his flesh and blood? In direct contact with truth, the crushed forces of the soul rise again. When love came to the door of India, that door was opened wide. At Gandhi's call, India blossomed forth to new greatness, just as once before, in earlier times, when Buddha proclaimed the truth of fellow feeling and compassion among all living creatures.
Today we also remember Mirabeen, a British-born follower of Mahatma Gandhi who participated in the movement for India's independence. Born in England, Mirabeen's original name was Madeleine Slade. Fascinated by the principles of non-violence of Gandhiji, she took India as her home and lived here for almost 34 years before returning to England.
Mirabeen arrived in Ahmedabad on the 7th of November 1925, where she was received by Mahadev Desai, Vallabhbhai Patel and Swami Anand. Gandhiji consented to Mirabeen's wish to stay at Sabarmati Ashram, and it was upon her arrival at the ashram that Gandhiji gave her the nickname Mirabeen.
During her initial years in India, Mirabeen learned Hindi and travelled to villages to understand the idea of India. She became one of the close confidants of Gandhiji. In 1931, Mirabeen accompanied Gandhiji to London for the second round table conference.
Mirabeen was active in spreading the spirit of non-violence. She was arrested multiple times, including during the civil disobedience, when she was detained on the charge of supplying information to Europe and America regarding conditions prevailing in India. She was again arrested during the Quit India movement when she was imprisoned in the Aga Khan Palace in Pune, along with Gandhiji and his wife Kasturba.
Following Gandhi's assassination in 1948, Mirabeen decided to stay in India.
For the next 11 years, she travelled to various Indian states, took on community projects and worked on environmental issues. On 18th January 1959, Mirabeen returned to England and a year later moved to a house near Vienna where she spent the remaining years of her life. In 1981, the Indian government conferred on her the Padma Vibhushan. We salute the noble soul.
We also remember 11 freedom fighters from Delhi who were martyred on 18th January 1858 for participating in the defense of Delhi during the First War of Indian Independence in 1857.
We salute the great martyrs.
और अब बात उस लेखक की जिसने हमें मोगली, बाघा, शेरखान जैसे नायाब किरदार दिए, यानी द जंगल बुक लिखने वाले मशहूर लेखक रुडयार्ड किपलिंग, जिनकी आज पुण्यतिथि है.
वेल, वी वर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर ऑथर इन द बिगिनिंग एज वेल लिसनर्स. इन 1894 अपीयर्ड हिज जंगल बुक व्हिच बिकेम अ चिल्ड्रंस क्लासिक ऑल ओवर द वर्ल्ड. ही इज द नॉवलिस्ट, poet and short story writer. Let me name two of his other works also. The second jungle book, The Seven Seas, is also very famous works by him.
जी बिल्कुल शगुन, और साहित्य में नोबेल जीतने वाले वे सबसे कम उम्र के व्यक्ति भी थे
जी.
और अब हम बात करते हैं हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन की, जिनकी आज पुण्यतिथि है। 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद में हरिवंश राय श्रीवास्तव का जन्म हुआ। बचपन में इन्हें बच्चन कहा जाता था और शगुन पूर्वी उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले जानते होंगे कि बच्चों को प्यार से इस तरह के नामों से या संबोधनों से बुलाया जाता है।
एब्सोल्युटली।
और बाद में ये बच्चन उनके नाम में ऐसा जुड़ा कि वो इसी से मशहूर हो गए। और दिलचस्प बात यह श्रोताओं की बच्चन थे तो हिंदी के कवि, लेकिन पढ़ाई उन्होंने अंग्रेजी साहित्य की करी थी, पहले इलाहाबाद विश्वविद्यालय से और बाद में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। इसके बाद वे अंग्रेजी के प्राध्यापक भी रहे, बाद में आकाशवाणी से जुड़े, विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ भी रहे। उनका पहला प्रकाशित काव्य संग्रह मधुशाला को माना जाता है और ये वो रचना थी जिसके लिए उन्हें अपने दौर में भी और आज भी सबसे ज्यादा जाना और माना जाता है। तो शगुन क्यों ना उसी मधुशाला की कुछ पंक्तियां सुन ली जाएं उनके बेटे अमिताभ बच्चन की आवाज में।
अपने युग में सबको अनुपम ज्ञात हुई अपनी हाला, अपने युग में सबको अद्भुत ज्ञात हुआ अपना प्याला, फिर भी वृद्धों से जब पूछा एक यही उत्तर पाया कि अब न रहे वह पीने वाले, अब न लगी वो मधुशाला।
1968 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार और 1976 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। और उनकी एक बड़ी मशहूर कविता है शगुन अग्निपथ, तो वो खुद हरिवंश राय बच्चन की आवाज में सुन लेते हैं।
यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ 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 अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ।
और आज मशहूर गायक केएल सहगल यानी कुंदनलाल सहगल की पुण्यतिथि है। बेहतरीन गायक होने के साथ ही वे एक अभिनेता भी थे और शगुन हिंदी सिनेमा का पहला सुपरस्टार कहा जाता है उन्हें। बड़े बड़े गायक चाहे लता जी हो, किशोर कुमार हो, मुकेश हो, उन सब के वे पसंदीदा गायक और प्रेरणा स्रोत रहे हैं। 4 अप्रैल 1904 को जम्मू में उनका जन्म हुआ था और 1936 में आई फिल्म देवदास में उन्होंने देवदास की भूमिका निभाई थी। ये फिल्म ही थी जिससे वो बन गए थे हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार। और संगीत की दुनिया का जाना माना नाम बनने से पहले सहगल ने सेल्समैन के तौर पे काम किया, रेलवे में टाइम कीपर की नौकरी भी की। 1947 में आज ही के दिन केवल 43 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया। आइए सुनते हैं उनकी फिल्म शाहजहां का ये मशहूर गीत उनकी आवाज में।
जब दिल ही टूट गया, जब दिल ही टूट गया, हम जी के क्या करेंगे, हम जी के क्या करेंगे।
Now let's talk about another writer, A.A. Mill, Alan Alexander Mill. Well, he's best known for his books about the teddy bear, Winnie the Pooh. Well, allow me to share a very interesting anecdote related to this character. The character named Christopher Robin, it was named after his son, and various characters were inspired by his son's stuffed animals, most notably the bear, which is named Winnie the Pooh. And for you listeners, we have this very upbeat song from the movie itself.
Up. Down, up, when I up, down, touch the ground, it puts me in the mood. Up, down, touch the ground, in the mood for food.
और आज उर्दू के मशहूर अफसाना निगार सआदत हसन मंटो की पुण्यतिथि है। उर्दू शायरी को अगर गालिब के हवाले से जाना जाता है तो उर्दू कहानी के लिए मंटो का नाम सबसे पहले आता है। अपनी कहानियों में खरा सच कहने के कारण ही उन्हें कई मुकदमों और अदालती कार्रवाई का भी सामना करना पड़ा। इसके बावजूद मंटो साफ शब्दों में कहते थे कि जमाने के जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, अगर आप उससे वाकिफ नहीं तो मेरे अफसाने पढ़िए। अगर आप इन अफसानों को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो उसका मतलब है कि जमाना ही नाकाबिले बर्दाश्त है। उन्होंने 270 कहानियां लिखी जिनमें टोबा टेक सिंह, ठंडा गोश्त, काली शलवार, बू घाटी का सौदा जैसी कई चर्चित कहानियां शामिल हैं। ऑल इंडिया रेडियो के दिल्ली केंद्र से भी जुड़े रहे जहां उन्होंने 100 से अधिक ड्रामे लिखे, कई फिल्मों के लिए कहानी और पटकथा लेखन भी किया जिनमें किशन कन्हैया, कीचड़, चल चल रे नौजवान, ए देस और सुपरहिट फिल्म मिर्जा गालिब भी शामिल है। 1948 के बाद मंटो पाकिस्तान चले गए और वहां पर भी जाकर के जी शगुन आप
Gee, well, let's talk about, at the end, let's talk about Danny Kaye, actor, comedian, singer and dancer. His performances featured physical comedy. His films were popular, especially for his performances of patter songs such as Inchworm and The Ugly Duckling.
और श्रोताओं, अब समय हो चुका है प्रोग्राम को समाप्त करने का, तो इजाजत दीजिए मुदिता और शगुन को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की. नमस्कार, नमस्कार।